Live from the Navadvip Parikrama.
Jnananjana Samapaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Vancha Kamsakaru Vrasya Kripasam Bhutjaye Vata Satisamam Pavanikya वैष्णव नमो महाप्रसन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य गौर कृषे गौरचंद्राय राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय अस्मदीय सर्वाराध्यम गुरु पाप पर नदी के लिए आप प्रवेश कर ओम विष्णु पाल कृष्ण भक्ति प्रज्ञान के सब चरणों पर चल कमल हो सत्सांग गणपति गणपति पुष्पांजलि अर्पित होता तपस्या सर्वाराध्यम अपने शिक्षा जो भक्ति प्रधान मामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों और अपने शिक्षा में श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण खंडों में कोटि कोटि बार श्रद्धा खंडवत पुष्पांजलि लूंगा। तत्पश्चात आदरणीय तेजंतीपाल वैष्णव वैष्णवी सत्जन आज हमारी परिक्रमा समुद्रगढ़ चंपकपट और फिर विद्यानगर होकर के ऋषि दीप होकर के यहाँ के उपस्थित हुए समुद्रगढ़ कथा ओखने अपना श्रवण करे कौन दिखे हम सारा शेखी शेखी समुद्र बड़ी समुद्र से खाने के से गंगा पर अंत महाप्रभु गीता दर्शन कर और गंगा के बल में तुम्हें सर्वसौभाग्य होती जो तुम्हारे खुले थे स्वयं सौभाग्य श्री कृष्ण चंद्र गौर रूपे थे कहीं एखने पर लीला विलास कर पत्रा को भी बोल रहे शीघ्र ही सन्यास लिए तुम्हारे ओखाने जा रहे और ओखाने से তোমার সমস্ত খুলেছে বহু কিন্তু সমুদ্র গঙ্গা এই সমুদ্র এতে আর সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কে শুনেছেন জীবসেন সম্বন্ধে ভগবানের একাধিক ভক্ত প্রাচীন ভক্ত সমুদ্রকে পরবর্তীকাল ভীষণ দ্বারকা কৃষ্ণে কৈক সমুদ্রকে নবদ্বীপে মহাপ্রভু কৈক আপনাকে তো যেতে পেয়ে তার ভক্তি সমুদ্র সে ভক্তলোক ভীমসেনের মাধ্যমে কৃষ্ণকে ওইখানে সে দর্শন করেছিল সে সমস্ত কথা ওখানে রসানন্দ প্রভু ইত্যাদি আজকে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পাঠিয়ে করে এইসব কথা বেশা কথা হয়েছে আমাদের সময়তে আমি আজকে বিক্রম মহারাজ এরকম হতো যে নাথন মহারাজ মহারাজ খালি দিচ্ছে কথা তারপরে আপনারা চম্পক ভট্টে আসলেন সেখানে জয়দেব গোস্বামী অরুণ ভক্তির কথা আক্রমণ করে থাকবেন জয়দেব গোস্বামী ওখানে গোবিন্দ ছিলেন নির্বাচনে আর ভাবেতে আসলো অধরানি মাল করেছে আর সেই মালকে দূর করবার জন্য কৃষ্ণ তিনি কিরকম ভাবে তার পদার্থ করেছে তার মূর্তি চলছে রেখে দিয়ে কি বলছেন সরকার রক্ষণ জানান আমার শীঘ্র কিমান জানান এই অল্ল কিন্তু লিখতে পার কৃষ্ণ সমস্ত ভগবানের ও ভগবান রাজারানী তাহার সেবিকা আর তাহার চরণীতে তিনি ভক্ত দিনে বিচার সম্ভব কথা যে মাঝখানে তাহার পুস্তক বন্ধ করে দিয়ে আর গঙ্গা স্নানে চলে দিল ওখান থেকে গঙ্গা নিকটে এক দু মাইল ওখানে গিয়ে আর ইতিমধ্যে কৃষ্ণ তাহার ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন তার স্ত্রীকে বললেন আমার একটি কথা মনে পড়ে গেছে তুমি বইটা নিয়ে পাবে তো লিখে দিয়েছে সে বই এনে দিয়েছে আর সে লিখে দিয়েছে লিখে আছে আমার ঘর লক্ষণ অবশ্যই এই মানব কর্তব্য ये आदेश है स्वर्णाक्षर करे तरीके कुछ फल पर कृष्ण जयदेव गोस्वामी साहब स्नान कर रहे थे लोगों स्नान करे आपने माइका में कह रहे थे कि ये तरीके दिए गए कि आप अपने रेखे जब चक करे और हम यासी नहीं तो छो बोलता देखी जैसे जैसे एक बहुत अच्छा था तखन तीन हनुमान परफेक्ट हो गया हमारे खाली संदेह छिल और अभी से संदेह संदेह कर दिए और अपने स्वयं लिखे स्वर लाभ कर देता रहती थी तखन हमारा किसी शरणे से करे थे तुम्हें कौन कौन सब भागवती तुम्हें कृष्ण के दर्शन कर दे हमी कर दे তারপরে মহাপ্রভু ইচ্ছাতে তিনি আবার চলে গেলেন জগন্নাথ গীত গোবিন্দের পর কৃষ্ণ স্মরণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন জগন্নাথপুরীতে একবার কোন দেবদাসী এই গান করতে ছিল তখন জগন্নাথে স্বরের সব কপাট খুলিয়ে অদ্ভুত কপাট তারা বন্ধ খুলে দিয়ে আর দৌড়িয়েছেন আর তাঁটাকে কুঞ্জেতে তার অঙ্গেতে সব ছিঁড়ে দিয়ে দিয়েছে সব ছিঁড়ে দিয়েছে তথাপি দৌড়ে দিয়েছে সকালবেলা তুই আমি দেখে যে তার অঙ্গেতে বিক্ষত দেখলেন কাপড় ছেড়া দেখলেন কে আসল তখন জগন্নাথ স্বপ্নে গেলেন যে আমি দেখছি আর একদিন মহাপ্রভু যাচ্ছিলেন টোটা গোপীনাথে এখানে যে দেবতাকে এই সব কীর্তন করতেছি জয় জয় বীর বলে শিবকামালা মন্ত্র সম্পর্কিত অদ্ভুত অবসরযুক্ত সেই মহাপ্রভু নিজে ভক্তি ধারণ করতে পারলেন না গৌরবের সাথে করতে আলিঙ্গন করতে গোবিন্দ দেবের তাকে নিকটে গিয়ে আছে তুমি গোবিন্দ আজকে রক্ষা করবে যদি আমি স্পষ্টতা তাহলে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আমি প্রাণ এই অদ্ভুত কৃষ্ণ কৃষ্ণের কর্মে কে অত্যন্ত রাধারাশি মহিমাযুক্ত এই রাত্রে থেকে আশপাশে আর কৃষ্ণ করতে দেয় না জগন্নাথ তারপরে সে তিনি এইখানে যে মহাপ্রভু দর্শন পেয়েছিলেন আর জগন্নাথ যেতে চান নাই জগন্নাথ পুরীতে মহাপ্রভু বললেন যে তুমি যাও ওখানে মহাবিলা আরো সব আরো কথা উড়িষ্যা উড়িষ্যাতে গোবিন্দ প্রজাপিত আছে আর ওখানকার তো এই যে পদাবলী সবটা অদ্ভুত স্বরেতে গান করে তারপরে আপনারা বিদ্যানগরে গিয়েছিলেন ওখানকার কথা সব তুমি শুনলেন সব বিদ্যা যে গুরু পুরুষরা ওখানে গিয়েছিলেন আর ওইখান থেকে শিখে তারপরে সব মহাপ্রভু ওখানে যে গিয়েছেন তার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন বিশাল মহেশ্বর বিশাল মহাপ্রভু ওখানে গিয়েছেন সারফম ভট্টাচার্যের ছাত্রী সারফম কিরকম ছিলেন, যখন ওখানে ছিলেন তখন মিথিলাকে দিয়েছিলেন নব্যান ন্যায় শিখুয়ার জন্য। যখন শিখা হয়ে গেল তখন ওখানকার গ্রহণকে নিয়ে আসতে চায়, ওরা জেনে সব বৈগুলিকে আসতে চায় ছিনে নিয়ে, তখন তিনি ওখান থেকে বেরিয়েই আবার স্মৃতিকে সমস্ত গ্রহণগুলিকে লিখে দিচ্ছে আর নিয়ে আসে নদীকে নব্বট ন্যায় আরম্ভ। আর পৃথিবীতে কোন জায়গাতে নব্য ন্যায় নদীতে এই সবগুলি কথা হয়েছে। আজকে সবিতা না হয় সবিতা আরো তো দুর্গার কথা বল ও
You came back, you wrote something,
Now again, class, now again you're coming. Nijayadeva Goswami said, no, Devi, I don't know anything, what you're saying. Then he saw the writing of Krishna, he began weeping. I had a doubt to Krishna, you cleared that doubt with your own hand. Therefore, Jayadeva Goswami fell at the feet of Padma, saying, you are fortunate, you have darshan of Krishna. I could not get that good fortune. Then on the desire of Chaitanya Mahaprabhu, he left Navadvip and went to Jagannath Puri after writing the Govinda. There one night when Jagannath Dev was hearing the composition of the Govinda, he became restless and he opened the doors of the temple and ran there to hear. As he ran, the bare stones scratched his body and flopped. In the morning of Pujari, you see the scratches on the mark of Jagannath, and then he became filled with bewilderment. But Jagannath appeared in his dream and explained the situation. Kali Sala Lita Dhanamana, Pakit Govinda is filled with the glories of Srimati Radhika in a hidden way. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu also heard that he Govinda, he also ran towards the thorn to embrace the singer. And Govinda said, oh Mahaprabhu, it's a woman. Then Mahaprabhu controlled himself and said to Govinda, oh Govinda, you saved my life. If I had embraced a woman, I would have had to commit suicide by giving up my life in the ocean. Therefore, this Deep Govinda is a Rasayan, a nectar giving tonic. It is full of the glory of Srimati Radhika. Therefore, even today, at night time, no one is able to sing Deep Govinda within the precincts of Jagannath Temple due to fear that Jagannath may run again. Jayadeva Goswami also has darshan of Chaitanya Mahaprabhu there in Jagannath Puri. Therefore, the Deep Govinda is so much famous, even today in Orissa, his kirtan and his padyavali is sung and preached everywhere. Then we went to Vidyanagara. That is the place of Sabadon Bhattacharya and also the friend of Jagannath Mishra named Maheshwara Vithasa. There Sabadon Bhattacharya composed his Navya Naya, his new thesis on logic and argument. So today we went to all those places. Both of them are not.
श्री मथ जी वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण जी के चरणों में वैष्णवों के चरणों में जो बैठ कर सुना और पढ़ा उसी में से जो एक बात कहकर भावभीनी श्रद्धांजलि गुरु जी के चरणों में समर्पित करने की कोशिश करूंगी। गुरु महाराज जी आदेश दिए हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का औदार्य और उनका वैशिष्ट्य, महाप्रभु के विषय में हम लोग 5 दिन से लगातार 6 दिन से लगातार सुन रहे हैं। परसों गुरु महाराज जी ने बताया महाप्रभु क्यों आए थे, राधा रमण महिमा की थी शुरुआत, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में उनकी 3 वंशाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए अपनी उन 3 वंशाओं को पूर्ण करना चाहते थे। वह 3 वंशाएं श्री कृष्ण नंदनी राधा रानी के मदनाथ भाव, क्षेत्रीय राधा जी का भाव है, उनके बिना उनकी केवल इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती थी, इसलिए श्री शांतनु ने प्रार्थना की राधा जी से। राधा जी जानती थी कि मेरे भाव को ये सहन नहीं कर पाए थे, बहुत उनको मना किया, परंतु श्री श्याम सुंदर तो चोरी में निपुण थे, इसलिए श्री विष्णानी नंदनी का उन्होंने वाम भाव अर्थात मदनाथ के महाभाव का उन्होंने आस्वादन करने के लिए चोरी किया। श्री राधा जी गुरुदेव ने ही एक बार जगन्नाथपुरी में हम लोगों को पढ़ाया था, जब भाव तो उन्होंने ले लिया और राधा जी समझ गई, राधा जी ने सोचा अभी हमें मेरे भाव की महिमा को मैंने पता नहीं, जब मैं हाथ कृष्ण करके पृथ्वी पर गिरती थी तो मैं सहन कर लेती थी पृथ्वी की चोट को, प्राणनाथ तो बहुत ही कोमल है, उसको भाव को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही अंग क्रांति से अपने प्राणनाथ की अंग क्रांति को ढक लिया। क्यों? क्योंकि जब वे मेरे भाव को आस्वादन करके रमन क्वाची महाभुजा इत्यादि भावों का आस्वादन करेंगे और पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरेंगे तो वह उनकी शरीर की रक्षा करने के लिए अंग क्रांति के रूप में श्री विष्णानंदनी ने प्यारे की प्राण रक्षा करने के लिए उनकी शरीर से निपट गई, इसलिए गौर सुंदर की गौर क्रांति हुए और नाम कराया गौर। उसी समय जिस समय महाप्रभु पृथ्वी पर आविर्भूत होने वाले थे, परिक्रमा आए साधु नाम विनाशा चंद्रता, यह भी एक कारण उपस्थित हो रहा था। तीसरा कारण था इसका जगत में भक्ति लुप्त हो रही थी, स्वर्ण विचार ज्ञान विचार गुणी भूता कलानी भूता इत्यादि भक्ति के द्वारा प्रभु की आराधना की जा रही थी, महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य जी को बड़ा कष्ट होता था, उन्होंने अपने प्राणनाथ की अपने आराध्य देव की तुलसी और गंगा जल से आराधना करके बुला रहे थे अर्थात उपासना कर रहे थे, यह तीसरा कारण था। और चौथा कारण गुरु जी बताते हैं अनर्पित करने और तीन कलम समय उद्यम भक्ति हरी पूरण सुंदर सिद्धि कदम संगीत कहा सदा हृदय कंदे पूरी तरह सचि नंद नंदन, जो शुद्ध भक्ति विलुप्त हो चुकी थी ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चरितमृत की व्याख्या में लिखा है शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है व्रज भक्ति। व्रज भक्ति में भी रूपालुप और भक्ति के भक्तों को ही शुद्ध भक्ति गया है, शुद्ध भक्ति प्राय लुप्त हो चुकी थी। महाप्रभु से पूर्व पूर्व आचार्य आए युद्धराजा में विष्णु स्वामी निम्बादित मध्वाचार्य इत्यादि आए, इन्होंने भी भक्ति का प्रचारण किया प्रचार किया, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का प्रचार और आस्वादन किया वह अनर्पणीय और अपूर्व था। उनका क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण हमने कौन से भाव का आस्वादन किया, कौन से भाव में विभावी थे, आपने किस किस भावों के द्वारा किन किन श्लोकों से उनको सांत्वना दी। सुनने के लिए वे उस कंठित बैठे रहते थे। जब स्वरूप लौटकर आते थे तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी बड़े ही उत्कंठा पूर्वक सुनते थे। श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु के समस्त भावों को रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए बतलाते थे। उधर महाप्रभु ने देखा कि मैं इस जिस भक्ति को लेकर आस्वादन कर रहा हूँ उसका भी मुझे प्रचार मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये अलग अलग गोस्वामियों के द्वारा अलग अलग भावों को वितरण कराया, जैसे वैदिक भक्ति सनातन गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित कराई, नाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी से कराई, और राधात्मिका भक्ति, रूपारूपा भक्ति, राधारूपा भक्ति का प्रचार प्रसारण श्री रूप गोस्वामी जी से कराया। रूप गोस्वामी जी को भी अपने सारे भावों को संचलित करके रूप गोस्वामी जी के द्वारा आज जिस फल को हम लोग खा रहे हैं स्थापित कराया इस धाराश्रम में। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के भावों को ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुँचाया है। उन्हीं भावों को रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कैसे आस्वादन किया जा सकता है, एक भक्त कैसे इन भावों को आस्वादन कर सकता है, सारा उन्होंने उपाय अपने ग्रंथों में बतलाया है। विशेषकर इस्तवावली में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस्तवमाला में रूप गोस्वामी जी ने इस्तवावली नहरी में रघु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बतलाया है। अगर हम लोग इस महाप्रभु के अस्तम में भाव को चाहते हैं, शुद्ध भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं, तो बड़ा सुंदर उपाय बतलाया। क्या बतलाया? आदर श्रद्धा। सबसे पहले हम लोग साधु और बलियों के मुख से कथा सुनते हैं और उन कथाओं को सुनकर सुनाने वाले की प्रति श्रद्धा होती है। सुनते सुनते फिर होता है गुरु पराकर करते हैं। गुरु पराकर अगर आज गुरुदेव इस धराधाम में नहीं आते हम कैसे जानते कि महाप्रभु रसिक शेखर और परम परम प्रभु है। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, विशुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध तत्व किसको कहते हैं, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, जीव तत्व किसको कहते हैं, हम कैसे समझ पाते। अपने गुरु पराकर करके गुरु वैष्णव के चरणों में सब कुछ समर्पित करके निष्कपट रूप में जितने हम लोग समर्पित होंगे उतने ही उनके निष्कपट रूप में हम लोगों के हृदय में भक्ति संचरित होती होगी। यह एक सिद्धांत है कि हम जितने हम लोग सोचते हैं भक्ति क्यों नहीं हो रही, इतने दिन से भक्त हरि नाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, कभी हृदय गर्भित नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते, हम कभी समझते नहीं कि गुरु जी के प्रभुत्म दृढ़िया है। क्यों? क्योंकि निष्कपट होकर उनकी सेवा नहीं करते हैं, इसलिए उनके हम लोग ऋणी नहीं बताते हैं। हम लोग हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अपने नौकरी होती है ऐसे ही गुरु वैष्णव के चरणों में निष्कपट रूप में यदि जितने रूप में हम लोग जितने प्रतिशत में उनके चरणों में आत्मसमर्पित होंगे वह अपने आप ही भक्ति हम लोगों के हृदय में संचरित कर देंगे। इसलिए गुरु पदाचार करके भजन क्रिया गुरुदेव जब हम लोगों को दीक्षा देते हैं, दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान ददाती इसी दीक्षा, अर्थात दिव्य ज्ञान माने का यहाँ पर सब लोगों का संबल जो जन्म जन्मांतर से छूटा आया है, जन्म जन्मांतर से जो ढक गया है हमारा संबंध, उसको गुरुदेव के द्वारा मंत्रों के द्वारा उस संबंध को स्थापित कर देते हैं और उस संबंध को बतला देते हैं। हमारे बड़े विष्णुओं का संबंध है मदीसा नाथक से चंद्रम, हमारी विष्णु नंदनी ही आराध्या है, हमारी विष्णु नंदनी राधा रानी ही हमारी हृदय स्वरी है, वही हम ठाकुर ने मधुर कादंबरी में वर्णन किया है। निष्ठा के बाद में अपने आप निष्ठा होते होते निष्ठा में प्रतिष्ठित होकर भजन करते 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 स्वाभाविक रूप में निष्ठा रुचि में परिवर्तित हो जाती है। निष्ठा में आस्पद नहीं होता है, निष्ठा में स्वाद नहीं आता है। कहता की मधुर मधुर मंगल मंगला नाम एकदम कहता मधुर से मधुर नाम में आस्पद नहीं होता है। परंतु जब निष्ठा में भजन स्थापित होकर हम लोग रुचि में पहुंचते हैं तो वह आस्वादन होने लगता है। पहले तो हम बुद्धिपूर्वक उस साधन भजन को कर निष्ठा में रुचि में वह स्वाभाविक रूप में होने लगता है। रुचि में भी कितने प्रकार के हैं यह सब भावों का वर्णन त्रिपुरवती ठाकुर जी ने किया है। रुचि जब रुचि मैच्योर होने लगती है बढ़ने लगती है तब साधक आसक्ति में चला जाता है। आसक्ति के मैच्योर होने पर सब सिम्टम बतलाए अलग अलग लक्षण बतलाए हैं। हम लोग कैसे जानेंगे कि हम आसक्ति में खड़े हैं रुचि में खड़े हैं? इस स्वभावों को भी श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ने बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है। उस भक्ति रसामृत सिंधु से भी सदन और सहज भाषा में श्री ठाकुर जी ने रूप गोस्वामी जी मुख्य प्रसाद को लेकर मधुर कादंबरी में वर्णन किया है। भाव भाव में जब पहुंचते हैं तो ये कष्ट भक्ति शरीर छूट जाता है। योग माया उस शरीर को लेकर प्रकट लीला में पहुंचती है और वहां जाकर मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मोदन मोहन सब मदनाथ के भाव पे पहुंचते हैं। यह गुरु ने जो राधा जी के काशी का भाव है जो मदनाथ महाभाव का जो साधक भाव के बाद में प्रेम स्नेमान जहाँ जहाँ बढ़ता जाता है उसका वही दिया हुआ गुरु जी का मंत्र है। जो गुरु जी के दिए हुए जो भाव है बढ़ते जाते हैं और श्री राधा जी की सेवा में राधा जी की दासी के रूप में नियुक्त कर देते हैं। इसलिए हम लोग गुरु जी के चरणों के ऋणी हो गुरु जी के ये महत कृपा को उपलब्ध करें हम लोग नहीं कर पाते। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उपलब्ध किया और कहा परिणाम गुरु भक्ति रतम प्रयत्न पायल मानवी समन्वनम कृपा अनुदेव परम दुख रुक्ति सनातन स्तम प्रभु मातयामी। गोस्वामी जी के कृपा को उपलब्धि करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसी ये गुरुदेव के वैष्णव आप तक कृपा करें। आप लोगों की जो आप लोग संदर्भों पर कृपा करते हैं उस कृपा की यदि अनुभूति होगी तो गाड़ी बुक हो जाएगी और एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म तक आपके चिरलिया बने रहेंगे। यही भाषण को यही कर गुरु महाराज जी हमको दे दिए सिग्नल की बंद किया जाए। हे गुरुदेव के वैष्णव नमस्ते धाम हम लोग की कार्य के रूप में आप लोगों के चरणों में आए हैं। आप लोग सब कृपा करके क्योंकि महाप्रभु के पात्र महाप्रभु के परिकर पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। वे अपनी शुभ कृपा दृष्टि से ही जीव को प्रसारित करते हैं। ये लोग पति पावन है, मैं पति घृणित हूँ। आपके चरणों में यही प्रार्थना करके यही कृपा प्रार्थना करते हैं कि आप जो प्रेम भक्ति देकर हमारे हृदय में हृदय का पोषण करें। पंचवा का गुरु भाष्य कृपा
किया ज्ञानंजरा सुना करना चक्षु उन्मुखिकां जेना तस्मै श्री गुरुवे नमः वंशता पशुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः I first of all offer thousands and thousands of sons of pranams and the lotus feet of my beloved Guru, Om Vishnu Path, Paramahamsa, Parivajika Charja, and Stone Person Shri Srimad, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. And again, millions of times, and the lotus feet of our beloved, Nitya Lila, Pravishta Om Vishnu Path, Paramahamsa, Parivajika Charja, and Stone Person Shri Srimad, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. And all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas devotees of the Lord, come to us now. Sri Sakshi Nandana Gaura Hari Ki Jai. So we have been hearing for many, many days the very sublime and sweet descriptions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his pastimes. In a couple of days from now, we will celebrate the Divine Appearance Day of this extraordinary personality. Once in a day of Lord Brahma, once every 4,320,000,000 years, this personality, Sri Chaitanya Mahaprabhu, advents to show us how to develop our natural affection and attraction to Krishna, which we have forgotten for so many lifetimes. So Krishna comes 5,000 years ago. Always Mahaprabhu advents 5,000 years later to teach us and show us how to serve Krishna. When Krishna manifested his pastimes, it was not common knowledge, was not understood clearly. What is Parakya Bhava, what is Swakya Bhava, what is Rasa clearly, until the advent of Mahaprabhu and his eternal associates came to expose and explain and describe the wonder of Krishna's pastimes. So 500 years ago, in Navadvipa Dham, Jagannath Mishra, he had a wonderful dream. He dreamt that the abode of the Lord entered his heart. He was describing to Sakshi Mata. And Sakshi Mata also, she was explaining to Jagannath Mishra, I have seen many celestial beings offering me Dandavat Pranam. And Jagannath Mishra was explaining, I am seeing your whole body very effulgent. They both understood at this time that a very special personality was manifesting in the womb of Sakshi Mata. Previously, Sakshi Mata had had 8 daughters and they all died. And then they had one son, Vishwaroop. They were so satisfied and pleased with it. But then Chaitanya Mahaprabhu, he remained in the womb of Sakshi Mata for 13 months. Generally 10 months, 9 months is the estimated time when a child will remain in the womb. So Jagannath Mishra and Sakshi Mata became a little worried, disturbed. But it's described how Chaitanya Mahaprabhu was waiting for a very auspicious time. And then at that most auspicious time, Providence provided a lunar eclipse. It was understood that only one moon should be illuminating the universe at the time of Mahaprabhu's advent. So Rahu, he covered moon that we see in the sky, and the most important moon of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arose 500 years ago. At that time, all of the Brahmanas, all of the worshippers of Vedic literature, they were chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. The whole of Navadvipa Dham, the whole of Bharatvarsh, the whole world, anywhere where there were devotees, they were all chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Even it's described in Muslims, they were imitating the non-devotees. They were imitating the devotees chanting. So when Mahaprabhu advented, the whole world was luminous with the sound of Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So Mahaprabhu advented in this very auspicious atmosphere of the chanting of the holy name. And then we have heard so many of his childhood pastimes from the local priest of Sri Gurudev. He's described how he was a child, how he would cry until the Brahmin ladies, they would chant, Hare Krishna, Hare Krishna. And then when he was very, very small, even 5, 6 days old, it was described how all the Brahmin wives, the celestial beings also, they were coming and offering pranam to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So during his pastimes in Navadvipa, these very, very sweet pastimes, we see him going through the mood of a scholar, how he was such an erudite scholar, how he defeated Keshava Kashmiri. And very beautifully, Gurudev described the other night how in that debate, Mahaprabhu showed his erudite personality. But then on visiting his guru in Ishwarapuri in Gaya, then he returned in a much more sober mood. And then more of a devotional sentiment was expressed by him. But this time, Mahaprabhu, even though endowed with the kanti and the bark of Srimati Radhika, still was not actually tasting that mood until he came to the Godavari River with Rai Ramananda Sambhava, the discussion, Rai Ramananda Sambhava at that time. So up until this point, his complete tasting of these three very special reasons for his advent was not manifest. But nevertheless, at that time in Navadvipa, so much madhurya, so much sweetness was being demonstrated by Mahaprabhu in his childhood pastimes, and then after with Ishwarapuri, when he was chanting with the devotees in Shiva's Anga, the very wonderful kirtans that were taking place. This is described as non-different to the Rasa Lila in Vrindavan. So Mahaprabhu, he was demonstrating throughout his entire life devotion and attraction to Krishna in the form himself as a devotee. This is most extraordinary. If we describe any of these teachings to a non-devotee, they must become attractive. These teachers of Mahaprabhu's life are so attractive to all people of this world. It's described that within the heart of the jiva, ashakti, or attraction to Krishna, is latently there. It's residing in the heart of all jivas. But yet to manifest this, to awaken this ashakti, Mahaprabhu has advented for his own personal reasons, Sri Radhaya Pranayama Mahima, the greatness of Radharani's qualities, he wanted to take Svadhyena Bhuta Tigrisham Madhya, that the Madhurima, the great qualities in Srimati Radharani, he also wanted to take. And the happiness that Radharani experienced from Krishna's own love for her, these so profound reasons that Krishna himself was manifesting to taste his own sweetness, will confound any jiva in this world. So this is the greatness of Mahaprabhu's manifestation, completely attracting all jivas to the path of wakening up their natural relationship of service to Radha and Krishna. So Mahaprabhu, in his pastimes in Navadvipa, was so exceptionally sweet and beautiful, especially in Srivastava, these pastimes, Srivastava, and all the devotees, and Vaishuracharya, and Vasunda, Haridas, Nityananda Prabhu, all these personalities were dancing every night. The most remarkable exchanges of loving affection. Mahaprabhu sometimes would take the form of Vishnu completely, Narayana, and he'd clear Srivastava's altar and take his seat there, and demand wine from Nityananda Prabhu, and take his a mood of Aishwarya, and the devotees would become very intimidated by these moods. And Mahaprabhu at that time, he would give so much mercy to the devotees there. Other times, he would be trying to grab the dust from their lotus feet, and he would be so much in a mood of humility. We see that in his final pastime in Purikam, many, many years later, 24 years later, when he gave his only instruction in the Shikshastika, how his mood of humility was so profound. We see in the first two verses of his Shikshastika how he's explaining so many tattvas and siddhantas, and then finally this Srinada Sunichena, he's demonstrating this mood of humility, and throughout his life he's showing these moods in his desire to taste Radharani's moods. So Mahaprabhu, this very significant quality of humility, Mahaprabhu was demonstrating himself. He is himself, he is the Lord himself, the Lord of all himself, the supreme personality of Godhead. And yet he's demonstrating the most humble mood as a sadhana, as a devotee, for us to try and embody these moods. If the devotee can hear and can try and emulate or follow these moods of deep humility, understanding that Krishna is the supreme personality of Godhead. I am not the supreme enjoyer, but Krishna is the enjoyer. Just now, Savita Didishi was speaking very beautifully about the difficulties we have in our practice, why we're not weeping when we're chanting Hare Krishna, why we're not experiencing ecstatic symptoms. And she's describing how our offenses, and these offenses manifest from not being able to sufficiently understand my insignificance in relationship to Krishna and Krishna's devotees. If the devotee can somehow or other catch up this mood, then his life can be successful and he can hear the sublime holy name that Mahaprabhu came to give to the jiva. Mahaprabhu gave so much every moment of his life, just like the radiant sun is constantly pouring down its mercy day after day. Mahaprabhu is like a million suns. The mercy Mahaprabhu is demonstrating is more than his earthly sun. Every day, our difficulty is our own container has holes in it, and our process is to block up the holes and eventually be able to retain the divine teachings in our heart that Srila Gurudev is giving us as the complete medium to Sri Mahaprabhu. So when we sit here in front of our beloved Gurudev, we understand that he is reflecting all of Mahaprabhu's mercy directly into our heart. So on these days we are feeling so much indebted, deep gratitude to this personality of our Gurudev, who is holding and containing this and distributing it in exactly the same way as Krishna himself was. Krishna was giving so much through his devotees. When Mahaprabhu, he only gave the eight Shikshastika instructions, but Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunatha Goswami, we were just hearing, all these personalities, Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Baladeva Jibbul Shastri, Srila Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, all the same mode of just giving, 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 exactly like the brilliant golden sun. This giving of pure affection for each other, Gurudev has been describing for so many years, and our relationships with each other also must be in tune with this mood. If we can, this will break our critical mentality. It's described as the nature of a materialist is his envy. So the nature of a transcendentalist is opposite to that. It's his affection for each other. So if we can develop this mood of affection individually, even in this world, then surely this will purify our envious mentality. And at some point we'll begin to understand the deeper concept that Srimad Mahaprabhu came to give and demonstrate through his whole entire life in the Gambira, his pastime, Swarup, Samana, and Rai Ramananda are breathtaking for the devotees to listen to and hear about. And the his mode of complete humility are shown so strongly, prominently through his whole life. So at this time, now that we've broken up, we are praying deeply for a little particle of these moods to be reflected from Srila Gurudev into our hearts so that we will understand these topics more fully and one day, pray to the end of the week when we chant to experience this attraction to Radha and Krishna, as is our birthright. Śrīla Gurudeva ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Satchinandana Gaura Hari ki jai, Gaurvrindavanvī.
Able to hear?
No problem. Ready, ready.
You're able to hear, Prabhu?
Yes, no problem.
Oh.
संकीर्तन ही ऐसा अस्त्र है जो हमारे हृदय के इन सब
हाथियों को और पहाड़ी मायावाद और संजाल तक छेदन कर पाता है। महाप्रभु जी ने साधारण जीवों को नाम संकीर्तन और उस नाम संकीर्तन की स्थिति बताई। स्वामी हरिदास ठाकुर उनको अपनी स्थिति में भजन करवाया। रूप गोस्वामी, शिवा सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को भजन की शिक्षा अलग प्रकार से दी। श्रीमद महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है उसमें अस्त्र का काम किया, क्योंकि संपूर्ण अवतारों में भगवान जब भी अवतार है उनके हाथ में अस्त्र होता है, लेकिन श्रीमद महाप्रभु बिना किसी अस्त्र के इस धरती पर आए थे और नाम संकीर्तन ने उनको पूरे विश्व में उन्होंने जुड़ा दिया था। और जिस तरह से एक शुद्ध रूप से सबके हृदय में नाम डाला था, सारा विश्व उसमें समा गया। आज भी उन्हीं की नाम महिमा से हम सब लोग अपने हृदय का शोधन कर रहे हैं। श्रीनगरी धाम जहाँ महाप्रभु ने अवतार लिया, वो हमारे हृदय के दुर्भावों का परिमार्जन करती है। कल या परसों जगन्नाथ बाबा जी के मंदिर में गए थे, वहाँ 105 वर्ष के संत रह रहे थे। उन्होंने बताया कि जो भाव भक्ति है वो किस प्रकार से वस्तु सिद्धि और वस्तु उपलब्धि के विषय में जब चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने महाप्रभु जी की बदान्यता बताई कि भागवत परंपरा में जो हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन है, जब वो वृंदावन में भजन कर रहे थे तो वहां से एक स्त्री गई जिसकी सिर पर एक टोकरी थी, टोकरी में महाप्रसाद रखा हुआ था। जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने उससे पूछा, स्त्री की वो स्त्री पर थी भंगी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम टोकरी में क्या ले जा रही हो, तो उन्होंने कहा महाप्रसाद है। जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि ऐसा हमें भी थोड़ा दे दो, किसी ने दे दिया। वृंदावन और मथुरा में पूरे गण मंडल में शोर मच गया कि बाबा सिर्फ ये हम क्या करता था। समाज किया, सभा आ गई और बाबा जी सदन होने लगे। बाबा ने कहा कि भाई क्या बात है, उन्होंने कहा कि आपने क्या कर डाला, क्या हो गया, आपने टोकरी में से महाप्रसाद खा लिया। तो बाबा जी ने कहा वो भंगन जी मुझे पता ही नहीं, फिर कौन थी वो, बोले वो तो द्वारका में एक पत्रांगी थी जो वृंदावन के भावों को लेकर यहाँ आई थी। तो हम जिस स्थिति का भजन करना चाहते हैं वो महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा के माध्यम से बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जीव जो है उसका मुख्य तत्व है वो है हरि नाम उपासना, मुख्य तत्व है भगवान श्री गौर की रस उपासना, और दूसरा है नाम उपासना। हमारे शंकर गोस्वामी जिस तरह से ग्रंथ लिखने में व्यस्त रहे और संख्या पूर्वक और बिना संख्या पूर्वक नाम संकीर्तन करते रहे और सारे जगत को जो महावचनता भाव से ग्रंथ हमें दे गए, वो भी श्रीमद महाप्रभु की कृपा से ही है। जब उनकी सनातन गोस्वामी से मिलते हैं तो उनके शरीर में घाव है, कुछ जैसा रोग हो गया है, फिर भी महाप्रभु उनसे गले मिलते हैं। तो उन्होंने वैष्णव का की हमें शिक्षा दी और दीनहीनता का पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाते पढ़ाते महाप्रभु ने बताया ना जन्म ना जन्म ना सुंदरी काम है, धन भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी भक्ति करते करते हमारे अंदर प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है कि मेरी बातों को सुनने वाला कोई तो हो, मेरी प्रतिष्ठा का धारा तो बनना चाहिए। महाप्रभु ने कहा मुझे जन्म भी नहीं चाहिए, इसीलिए जब आज हम चंपाघट पे गए तो वहां जब चंपाघट पे श्री जयदेव गोस्वामी राधा कृष्ण की चंपक पुष्पों से पूजा कर रहे थे, तो एक दिन चंपक पुष्पों से सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में प्रकट हो गए। वो आश्चर्य से देखने लगे, अपनी पत्नी पद्मावती को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर रूप है। तो उन्होंने हतप्रभ होकर जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ और तुम अब जगन्नाथपुरी चले जाओ, तुम्हारे द्वारा रचा गया जो गीत गोविंद है मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसका रसा स्वादन करूंगा। तो श्रीमद महाप्रभु ने अपनी पूरी व्यवस्था बनाई थी। अद्वैताचार्य जी ने जो महाविष्णु तत्व है या किसी की दृष्टि में सदाशिव तत्व है, उन्होंने महाप्रभु जी को नीचे बुलवाया, अवतीर्ण करवाया, भूतल में बुलवाया। तो अद्वैताचार्य के साथ जब वो उनको गुरु मान रहे थे, अद्वैताचार्य का कि मेरा अपराध हो जाएगा, श्रीमद महाप्रभु मेरे जैसे जीव जीव व्यक्ति को यदि गुरु बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तब श्री अद्वैताचार्य जानबूझ कर उपनिषद इत्यादि का माया फरक जो वैष्णव तत्व से वैष्णव तक जो विषय है उसका प्रतिपादन करने लगे। श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि अब ये रुकेगा नहीं और नाड़ा नाड़ा कहकर उनका क्रोध करने लगी। इतना ही नहीं, जब श्रीमद अद्वैताचार्य की कृपा से उनके भाई विष्णु चले गए थे और सती माता उन पर क्रोधित हो गई थी, तो महाप्रभु ने अपनी माता को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वैष्णव अपराध करके मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें श्रीमद अद्वैताचार्य के चरणों में अभी क्षमा याचना करनी पड़ेगी। श्रीमद महाप्रभु बार बार में भगवान श्री कृष्ण जी कहे गंगा के किनारे विभिन्न प्रकार से लीलाओं को आस्वादन कराते रहे। कभी उन्होंने ब्राह्मण के साथ बार बार भोजन करके उसको आहार करते रहे। श्रीमद महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के अवतार है, प्रतिमूर्ति है। श्रीमद महाप्रभु जब जीत गोविंद का रसास्वादन करते थे जगन्नाथपुरी में, जीत गोविंद क्या है, भगवान जगन्नाथ ग्रह ग्रह के आवेश में है। श्री मन महाप्रभु वृंदावन में ग्रह की राधा के रूप में, जगन्नाथपुरी में ग्रह की राधा के रूप में है और वही श्री जीत गोविंद में हमें मिल जाते हैं। जीत गोविंद का रसास्वादन करते करते महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। उनकी जो भावना है, उनका जो चित्तवन है, वो उनका डूब जाते थे। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। उनके जो संपूर्ण सेवक थे सब ब्राह्मण है, यद्यपि राय रामानित्यादि के साथ उन्होंने उन्हीं को सम्मान दिया कि श्री राय जी आप परम ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि भक्ति रस तत्व क्या होता है। इसी तरह से वो सर्व ब्राह्मण के साथ उनको सम्मान, तो सबको सम्मान देने की जो प्रथा है पूरी श्रीमद महाप्रभु से चली आई। श्रीमद महाप्रभु ने श्रीनगर धाम में जन्म लेकर हम सबके अपराधों को भंजन करने का रास्ता बताया। तो जिस गोविंद जो महाप्रभु को आस्वरण किया करते थे, जिस गोविंद के लिए कहा जाता है कि जिसे पढ़कर ऐसा होता है कि ये चक्कर तुम कहीं और छिप जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। श्री तुम्हें तो मिठास है ही नहीं, ये सुंदरी के अधर तुम्हारे अंदर तो मादकता है ही नहीं। राक्षा तुम्हारे अंदर ऐसी उन्मादिता कहाँ से आएगी। ऐसे की जीव गोविंद का अपने आने से पहले महाप्रभु रचना करा रहे थे। उसका जो मंगल गीत है, शिव कमला कुछ मंडल जित कुंडल करे से ललित वन मार जय जय देव हरे, तो उनकी उपासना कैसी है। उनकी उपासना है शिव कमला कुछ मंडल, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती है और इंद्र व्यक्ति लीला कर रही है। उनकी लीला से उनका प्रथम जिद शुरू होता है और स्वयं नंद बाबा आकर उनकी स्वीकृति देते हैं और कहते हैं कि हे राधे ये कक्षटी बंदर यानी आवाज करना शुरू कर दिया है। शुभ और सारी बोल रहे हैं वो तो अब तुम अपने घर की ओर चली जा। वो सी राधा जो हमारे गौर की परंपरा है, रस तू पर परिया में ही रस है, उसका महाप्रभु जी ने स्थापन करवाया। उन्होंने जो नाम दिया उसने कोई विधान नहीं रखा, हंसते बैठते सोते जाते हर समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरे कृष्ण और इतना ही नहीं हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ बताया। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार, श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी के अनुसार, श्रीमद कृष्णा के गोस्वामी के अनुसार हमें अर्थों से आनुगत्य का भजन करना चाहिए। गंभीर लीला में श्रीमद महाप्रभु खोए रहते थे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बढ़े बनवा दी, वहाँ पर जब कृष्ण आता है और राधिका जी इसमें गरज खंडना इसमें क्या काम दे और गरज क्या फिर काम दे के फिर कहना खंडन किया जा रहा है। ऐसी जीत गोविंद में जो पाप वासना का आभास ही समझते हैं, उनके निजराधी को अवरत से छेदो तुम ही सवेरे और बांध लो बाबुलता के बंधन में अति मोह को पीड़ा भरो मेरी हंस बोलो बंदी मुक्ति न तुझको चंदी मार तो मार नहीं क्यों पंचम स्वर में बोलो करल बीच से देख हृदय से सारे बंधन खोलो जो तो भाव है को भी तुम्हारा अद्भुत आज बड़ा है स्वयं जिसने अति है सब प्रिय ये मुक्ते सजल खड़ा तो भगवान श्याम सुंदर आते हैं महाप्रभु जी के आस वाले देखिए लीला का आस पास और श्री राधा जी के सामने अपराधी की भांति गिर पड़ते हैं माफी मांगते हैं कि राधा तुम कभी ये मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गया ऐसा तुम कभी मत सोचना तो राधिका कहती है अच्छा तुम नहीं गए थे तो तुम्हारे अधर पर सच्चे निशान क्यों दिखाई देते हैं तुम्हारे अक्सर सर कुमकुम रंग से रंजित क्यों दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखें रखना भी क्यों दिखाई दे रही है श्याम सुंदर और राधिका मान कर लेती राधिका को उनकी सखी देखती है जैसे वातावरण में अभी राधिका नायिका बनाकर अर्धरात्रि है और राधिका देख रही है कि चंद्रमा गगन पर उगे होता चला जा रहा है और श्याम सुंदर अभी नहीं आए चंदा चंद्र गगन में लख कर खली आगम में बाधा बिलख बिलख परिताप मरी जो उठती है राधा बीत रहा संकेत समय पर बिन कुंज में आए विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें ये भाए नव यौवन किस काम का है ये मेरा रूप किस काम का है यदि वो काम तुम्हें तो आगे से नहीं करता लेकिन राधा के संदर्भ में हमारे संदर्भ में भी हमारे मन के लिए कोई निशान एक आ है यदि वो हमारे गुरु और भगवान के किसी को लोहा नहीं लगता हमारे जीवन को भी निस्कार है यदि उसका एक एक क्षण गौर श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यानंद साहब उनके चरणों में अर्पित न हो जाए कि गीत गोविंद के भाव और श्रीमन भागवत का महाप्रभु अपनी गंभीर लीला में अध्ययन करते रहे महाप्रभु ने पाठ को मौत का विचार नहीं किया संपूर्ण रूप से वर्षण किया अपनी कृपा का इच्छा शक्ति श्री कृष्ण चतुर्भाग के ऊपर अधिक करती कि वो किसी पर दया करेंगे या नहीं करेंगे महाप्रभु ने आकर श्री राधा जी के भावों से अपना औदार्य भाव का वर्षण किया और आज भी उस बरसात की मौजूद ही नहीं है हमारे हृदय की मनुष्य में आज उस बरसात का चिंतन हो रहा है इसलिए इस नकली भाव में श्रीमद महाप्रभु का स्मरण करते हुए उनके भावों का रक्षा स्वादन करते हुए हम अपने जीवन को जिये
आप श्रीमान की श्रीमद भक्ति के दान माधव महाराज की कुछ बोलेंगे
हेलो Can you hear, Prabhu?
Yes. Yes, no problem. Is that ready?
Hello?
Hi, Bill.
Hello, can you hear, Prabhu?
Yes, everything's fine.
Yeah, right, thank you.
Thank you, ready, ready.
Oh,
আমাদের বেদ সম্পর্কের নাম উঠে দিন বহু পূর্ণাদিন নবরকুমার বেদান্ত শিক্ষা অনুষ্ঠান হবে চলো বেদান শিক্ষাকে এই নাম নিকার পারবেন কৃপয়া আমাদের বেদন কামদানি ডাক্তার শুভসম্পর্কি সব নাম নিকালে
Okay. And we are blessed with many outstanding publications that reveal that truth, particularly the Harmonious Magazine and something in the back of our songbook, this Upanishad Company, on Srila Bhakti Meditation Lodge. Now, how does this relate to the teachings of Mahaprabhu? Because Mahaprabhu's teachings and his movement bhakti and how he developed it is revealed through the writings and example of our acharyas. Now, what did Mahaprabhu do in order to execute his bhajan, in order to perform bhakti himself? We're hearing every day about this wonderful exalted philosophy, but what did Mahaprabhu actually practice? What was his example? Well, every day when we go on parikram, at each stop, if you read the
This
were there to make construction. That's what we're supposed to do. There is a group who always come into and come into the association of the Baptists, and they hear about chanting, they hear about all principles of devotional service, but there are always some who have a tendency to go and want to do solitary bhajan, to go out to run accordance and to enter into some deep meditative state, chanting Hare Krishna and thinking about Radha and the gopis and Radha's clothes. I want to enter into my bhajan deeply. But according to Srila Bhaktivinoda Gautama Maharaj, this is not the rule of the Bhakti rule. He says, does everybody read this? Do you know this book? Do you know where this is in the song book? Have you read this? You should read this. You should study this. He says that first of all, the Anga of Bhakti, known as Kirtan, is the best and most complete limb of Bhakti. But how to perform it? He says to speak Hare Krishna always and everywhere, and being absorbed in speaking about services related to Krishna is real silence before a man preaching Hare Krishna always and everywhere is real Hare Krishna. And not to go out into the solitary bhajan of the Bible, which is a Radha court, but to stay in the association of devotees doing group preaching, group sankirtan. This is the root of the Mahaprabhu and its associates. There may have been some very advanced devotees, such as Hare Bhagavan Thakur, who spent a great deal of time in solitary bhajan, but they also spent a great deal of time in the association of Mahaprabhu and the kirtan party. So, this was my small realization, the small thing I wanted to share. Thank you very much.
চতুর্থ দিবস পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হল। আগামীকাল মনোষ্টম দিন, তো আমরা সকাল পাঁচটার সময় যেভাবে আমরা পরিক্রমায় যাচ্ছি সেইভাবে আমরা সকালে পাঁচটায় আমরা এই স্থান থেকে রওনা হব। আর কালকের পরিক্রমা অনেকের ধারণা অনেক বেশি লম্বা, অনেক দূর, তাহলে আজকের যেহেতু অর্ধেক পরিক্রমা, আগামীকালের অর্ধেক পরিক্রমা আমরা আজকে করে ফেলেছি, এই জন্য পরিক্রমা খুব সংক্ষেপ, ছোট পরিক্রমা আছে। শুধু জামার রাস্তা বেশি দূর নাই, অল্প দূর রাস্তা, তো কেবল জাহানগর জন্মভূমির স্থান এবং মাম জাতি মদতলম্বী শ্রী সারঙ্গ মুরারির পাঠ এবং মাম জাতি মদতলম্বী আমরা দর্শনে যাব, সেই স্থান থেকে আমরা ফিরে আসবো। অর্থাৎ দুপুরের মধ্যেই আমরা বারটার মধ্যে আমরা নিশ্চিত রূপে ফিরে আসছি, তাহলে আশা করি জামনগর জন্মভূমি স্থান ওর মামুরাতি যায়গে সারদ মুরারি কে পাশ তথা মামুরাতি হম লোক দর্শন করতে কলকাতা লৌটেঙ্গে। টুমারো মর্নিং আই উড লাভ আওয়ার স্টার্ট আওয়ার ওয়েলকাম গোয়িং টু মামুরাতি মদতলম্বি জামনগর। So please, everyone should be ready. I would love morning. Yeah, my name is Kanikita. अक्षरे अक्षर नाम लिखेंगे
tomorrow afternoon, 4 o'clock, there will be a dance performance by one of the Orient style dance. It will last about half an hour. If you are back in time, you are welcome to come here and be at the performance. Also, homeless bodies, Western bodies, who have not registered yet, kindly fulfill this responsibility. How much NECAM you are receiving, you cannot store it. So, really, some of that thing which you brought and give a donation, contribution for our Parikram Festival. On the room, we also do another way of the temple building, and there will be prasada for all Western devotees served every day.
Whatever you want.
Hello, just a minute.
Yeah, tell me, Prabhu.
Yes.
Hello.
Hari Bhav. Dhanyavaad.
Just a minute, Prabhu. Just a minute. Just a minute.
Thank you.